अध्याय सात भाषा की उत्पत्ति। भाषा की उत्पत्ति से दो बातें अभिप्रेत हैं। पहला भाषण अर्थात ध्वनन अर्थात बोलने की शक्ति और उत्पत्ति, और दूसरा उच्चरित ध्वनि तथा अर्थ में परस्पर संसर्ग स्थापना की क्षमता का आरंभ। जहाँ तक ध्वनन यानी ध्वनि उत्पन्न करने का प्रश्न है, वह अगणित पशु पक्षियों में पाया जाता है। जैसे कुत्ता भौं भौं करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, कोयल कूं कूं, कौवा काव काव, इस ध्वनि में सार्थकता का अभाव है। इसीलिए यह उस अर्थ के में भाषा नहीं है जो मनुष्य में पाई जाती है। ध्वनन समर्थ प्राणी होने के कारण मनुष्य की भी इस प्रकार की क्षमता रही होगी, किंतु वह ध्वनि के उच्चारण मात्र से संतुष्ट नहीं रहा। उसने अपने द्वारा उच्चरित ध्वनि में सार्थकता के आधान का विस्मयकारी प्रयत्न किया। ध्वनि और अर्थ का यह संसर्ग स्थापना ही मानव भाषा की चरम उपलब्धि है। काका ध्वनि को काक अर्थ से, कुकु ध्वनि को कोकिल से, झरझर ध्वनि को निर्झर से संबद्ध कर मनुष्य ने अभिव्यंजना की ऐसी सूक्ष्म और महत्वपूर्ण पद्धति का आविर्भाव किया जिसके कारण वह अन्य जीवों से सर्वथा भिन्न कोटि का जीव बन गया है। भाषा का अर्थ केवल भाषण लेने पर भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि जब सृष्टि के अन्य जीवों में भाषण की शक्ति थी तो मनुष्य में भी वह रही होगी। उसकी शक्ति का अकस्मात आविर्भाव नहीं हुआ होगा। तब भाषा की उत्पत्ति का अभिप्राय यही है कि ध्वनि के साथ अर्थ का संयोग करना मनुष्य ने कब से सीखा, अर्थात शब्द अर्थों के वाचक कैसे बने। इस प्रश्न का समाधान करने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। यह प्रश्न एक प्रकार से स्वयं मनुष्य के आविर्भाव के प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है। आज से लाखों साल पहले की स्थिति को बताने का कोई साधन नहीं है। दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों, भाषा विज्ञानियों, इतिहासज्ञों ने अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, किंतु वे सभी अनुमान प्रसूत हैं। निश्चित और निर्णयात्मक सामग्री का अभाव होने से इनमें से कोई भी सिद्धांत निर्दोष नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न का पूर्ण और संतोषप्रद समाधान किसी से नहीं होता। भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, यह प्रश्न लगभग वैसा ही है जैसा यह कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। कहने वाला कह सकता है कि जिस प्रकार मनुष्य की उत्पत्ति हुई उसी प्रकार भाषा की भी। यदि मनुष्य प्रकृति के रूप से अथवा विकास के परिणाम स्वरूप अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ हो सकता था तो उसकी भाषा भी श्रेष्ठ हो सकती थी। अब तक कोई समुचित और स्वीकार्य साधन नहीं मिलने से आधुनिक भाषा विज्ञान ने इस समस्या का विचार करना बंद कर दिया है। 1866 ईस्वी में स्थापित पेरिस की भाषा विज्ञान समिति ला सोसिएते द लिंग्विस्टिक ने अपने अधिनियम में इस बात का स्पष्ट निर्देश दिया है कि समिति के तत्वाधान में भाषोत्पत्ति विषयक विचार नहीं हो सकता। आधुनिक भाषा विज्ञान का विषय है उपलब्ध भाषिक सामग्री का अध्ययन। यह कहना है कि भाषा विज्ञान का काम अनुमान करना नहीं, प्रत्यक्ष सामग्री का उपयोग करना है। भाषोत्पत्ति की मीमांसा मानव विज्ञान या समाज विज्ञान या दर्शन का विषय हो सकता है, भाषा विज्ञान का नहीं। अतः भाषा विज्ञान की अत्याधुनिक पुस्तकों में भाषोत्पत्ति विषयक सिद्धांतों की चर्चा नहीं की जाती। कवि द्रोणों ने इस विषय पर पहले विचार किया है और उनके सिद्धांतों का ऐतिहासिक महत्व है। कम से कम उनसे इतना तो पता चलता है कि भाषोत्पत्ति के संबंध में उन्होंने क्या सोचा, इसीलिए यहाँ उनके उल्लेख असंगत नहीं होगा। किसी भी शास्त्र में अतीत के चिंतन का और कुछ नहीं तो ऐतिहासिक महत्व होता ही है। पहला दिव्योत्पत्ति यानी डिवाइन सिद्धांत। ईश्वरवादी प्रत्येक कार्यकलाप का, यहाँ तक सृष्टि का भी संबंध सूत्र किसी दिव्य शक्ति से जोड़ते हैं। स्वभावतः मनुष्य की उत्पत्ति को भी लेकर उन्हें कोई उलझन नहीं है। जब ईश्वर मनुष्य को उत्पन्न कर रहा था तो उसकी भाषा को भी उत्पन्न कर सकता था। मनुष्य जब भी उत्पन्न हुआ होगा तो अपनी संपूर्ण विशेषताओं के साथ, उससे अन्य प्राणियों की अपेक्षा शारीरिक सौष्ठव, आंगिक स्वच्छंदता और विकसित चेतना के साथ भाषिक क्षमता भी आई हो तो क्या आश्चर्य। मनुष्य में जिस कारण से उच्च कोटि की शारीरिक और बौद्धिक श्रेष्ठता आ सकती थी, उसी कारण से भाषिक श्रेष्ठता क्यों करना आती। इसीलिए प्रत्येक धर्म का अनुयायी न केवल अपने धर्म को बल्कि अपने धर्म ग्रंथ को भी सर्वश्रेष्ठ मानता है और उसी से भाषा के आविर्भाव की कल्पना करता है। हिंदू संस्कृत भाषा को देववाणी कहकर सारी भाषाओं के जननी घोषित करते हैं। ऋग्वेद का एक मंत्र है, देवी वाचम जनयंतः देवा ताम्रु विश्वरूपा पशो वदन्ति। ऋग्वेद अर्थात वाक देवी वाणी को देवों ने उत्पन्न किया और उसे सभी प्राणी बोलते हैं। इस मंत्र में वाणी की दिव्य उत्पत्ति और संदिग्ध शब्दों में कही गई है। महर्षि पाणिनि द्वारा उद्धृत 14 प्रत्याहार सूत्रों को शुक डमरू निनाश उत्पन्न मानना दिव्योत्पत्ति का ही रूपांतरण कहा जा सकता है। अनिश्वरवादी बौद्ध और जैन भी पाली और अर्धमागधी को आदि भाषा समझते हैं, क्योंकि बुद्ध और तीर्थकर ने अपने उद्देश्यों के लिए पहले पल इन्हीं भाषाओं का प्रयोग किया था। ईसाई ओल्ड टेस्टामेंट की इब्रानी हिब्रू भाषा को और मुसलमान अरबी को संसार की प्रथम भाषा मानते हैं। ईसाइयों का विश्वास है कि ईश्वर ने आदम और हव्वा को पूर्ण विकसित इब्रानी भाषा दी और यदि मनुष्य ने अपनी महत्वाकांक्षा के कारण स्वर्ग तक पहुँचने का दुष्प्रयास न किया होता तो बाबुल की मीनार वाली घटना न घटित होती और आज संसार में जो भाषा भेद दिखाई देता है वह दिखाई न देता, सर्वत्र इब्रानी का ही प्रयोग चलता होता। बिनु हरि कृपा त्रिनहु नहीं डोले के अनुगामी की दृष्टि में ईश्वर इच्छा सारी समस्याओं का सच समाधान कर देती है, किंतु विज्ञान में तर्काग्राही दृष्टि उसे स्वीकार नहीं कर पाती। समीक्षा, इस सिद्धांत में आपत्ति की बात यह है कि मानव भाषा ईश्वर प्रदत्त है तो उसमें इतना भेद क्यों है? अन्य पशुओं की भाषा तो संसार में एक ही है, सभी देशों को एक सा भोंकते हैं, घोड़े एक समान ही निनाते हैं, अन्य पशु पशुओं की बोली में भी एक रूपता दिखती है, फिर एक रूपता मनुष्य की बोली में क्यों नहीं पाई जाती? इस शंका का समाधान दिव्योत्पत्ति सिद्धांत नहीं कर पाता। बात यह है कि आस्तिकता के पीछे श्रद्धा काम करती है और वैज्ञानिकता के पीछे तर्क, दोनों की दृष्टियां ही दो हैं। इसीलिए श्रद्धा प्रसूत दिव्योत्पत्ति सिद्धांत तर्क द्वारा उठाई जाने वाली कठिनाइयों की ओर आंखें फेर लेता है। अस्वीकार्य होने पर भी दिव्योत्पत्ति सिद्धांत में इतना सार है कि मनुष्य को ही सार्थक शब्द के प्रयोग के लिए योग्य ध्वनि यंत्र मिला और उसे संचालित करने वाली बुद्धि भी। इस दृष्टि से वह ईश्वर का प्रिय पात्र अवश्य था, अन्यथा वैसा ही ध्वनि यंत्र दूसरे पशुओं को भी मिल सकती थी। स्पष्ट है कि मत वैज्ञानिक दृष्टि से अग्राह्य है। दूसरा, संकेत यानी सिंबल सिद्धांत। कुछ विद्वानों का मत है कि आरंभ में मनुष्य की भी पशुओं के समान सिर आँख हाथ पैर आदि अंगों को चलाकर अपना अभिप्राय व्यक्त करता था, किंतु इससे उसका पूर्ण अभिप्राय पूर्णतः व्यक्त नहीं हो पाता था। इस असुविधा को दूर करने और अपने वक्तव्य को पूर्णता और अस्पष्टता से व्यक्त करने के भाव से प्रेरित होकर मनुष्य ने पारस्परिक विचार विनिमय द्वारा ध्वन्यात्मक भाषा को जन्म दिया, अर्थात आंगिक संकेत की असुविधा और अपूर्णता को मिटाने के लिए उसने राय बात कर भाषा जैसे समर्थ पूर्ण और सुविधाजनक संकेत को प्रस्तुत किया। समीक्षा, इस सिद्धांत में अनेक असंगतियां हैं। पहला, यह सिद्धांत मान लेता है कि एक समय ऐसा था जब मनुष्य को भाषा नहीं मिली थी, पर यदि भाषा भी नहीं थी तो उसका आवश्यकता का अनुभव मनुष्य को कैसे हुआ? आज भी बंदरों या बैलों को उसकी आवश्यकता का अनुभव कहाँ हो रहा है? यदि होता तो वो भी कोई महासभा करके अपने लिए एक भाषा बना लेते और अपने विचारों को अधिक पूर्णता से व्यक्त कर पाते। दूसरा, भाषा के अभाव में मानव महासभा के विचार विमर्श किस माध्यम से हुआ? ये दूसरी असंगति है। जब हजारों या लाखों की संख्या में वाणी विहीन मनुष्य इकट्ठे हुए होंगे तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर तर्क वितर्क करने के कोई माध्यम तो होना चाहिए, वह क्या था? तीसरा, महासभा में विभिन्न अर्थों के वाचक विभिन्न शब्द संकेत किसने गढ़े और किस आधार पर गढ़े? संभव है विभिन्न व्यक्तियों ने एक ही वस्तु के लिए अलग अलग शब्द सुझाए हों, फिर उन अनेक शब्दों में से एक को किस आधार पर स्वीकार किया गया? आज भी 10 आदमियों की बैठक में कोई बात आसानी से और एकमत से स्वीकार नहीं हो पाती। सभ्यता की आदिम अवस्था में यह आश्चर्यजनक एकता कैसे संभव हो गई? चार, यदि बिना भाषा के इतना महत्वपूर्ण विचार विमर्श और निर्णय हो ही सकता है तो भाषा की आवश्यकता क्या थी? उस समय भाषा का स्थानापन्न जो भी माध्यम रहा हो वह पर्याप्त समर्थ था और उसे आगे भी काम लिया जा सकता है, यह सिद्धांत भामा ने ऐसे उपस्थित किया है। यंत ईदृशावर्णा इग्रथार्थ विधायन व्यवहाराय लोकस्य प्रागुत्थम समय कृत, अर्थात इतने ऐसे वर्ण ऐसे अर्थ का बोध कराएं। इस प्रकार पहले यानी सृष्टि के आरंभ में लोक व्यवहार के लिए संकेत दिया गया। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद से प्रकाशित भामा विरचित काव्यालंकार के भाष्य में मैंने इस कारिका की जो व्याख्या की है वह वस्तुतः उपयोगी है। सृष्टि के आरंभ में ही यह संकेत निश्चित कर लिया गया कि इतने वर्ण इस क्रम में उच्चरित होने पर अमुक अर्थ का बोध कराएंगे। जैसे क के बाद म और म के बाद ल रहे तो उससे पुष्प विशेष यानी कमल का बोध होगा। यह शुरू से ही निश्चित हो गया। इस तरह अनंत संकेत बना लिए गए आज जो आज तक काम चल रहा है। सृष्टि के आरंभ में इस प्रकार का संकेत कर लिया गया था, पर यह संकेत किसने किया और जब तक संकेत स्थिर नहीं हुआ तब तक लोक व्यवहार कैसे संपन्न होता था? कुछ लोगों ने मिलकर यह निर्णय लिया होगा कि अमुक क्रम में अमुक वर्ण उच्चरित करके अमुक अर्थ बोध हो। जिस दिन यह निर्णय हुआ उसके पहले कैसे काम चलता था? जिस प्रकार पहले चलता था उसी प्रकार बाद में भी चल सकता था। फिर एकाएक कैसे अनुभव हुआ कि हमें सुनिश्चित संकेतों की आवश्यकता है? अनुभव ही हुआ तो संकेतों का निर्धारण किस माध्यम से किया गया? जो संकेत निर्धारित हुए आगे चलकर बदल क्यों गए? बदल गए तो किसकी सम्मति से? आज वही भाषा तो नहीं बोली जा रही जो सृष्टि के आरंभ में बोली जाती थी। न जाने कितनी बार उनका रूप परिवर्तन हुआ। इस तरह की अनेक शंकाएं हैं जिनका समाधान इस सिद्धांत में नहीं होता। तीसरा, रणन सिद्धांत यानी डिंग डोंग। इस सिद्धांत की ओर सर्वप्रथम संकेत प्लेटो ने किया था, किंतु इसको पल्लवित किया मैक्स मुलर ने। रणन सिद्धांत के अनुसार शब्द और अर्थ में एक प्रकार का रहस्यात्मक नैसर्गिक संबंध है। संसार में प्रत्येक वस्तु की अपनी विशिष्ट ध्वनि हुआ करती है जो किसी वस्तु से आहत होने पर व्यक्त हो जाती है। उदाहरणार्थ यदि हथौड़े से किसी धातु लकड़ी पत्थर ईंट शीशे आदि पर आघात करे तो उससे विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं और उन ध्वनियों को सुनकर भी कोई पहचान ले सकता है कि वे किस वस्तु से उत्पन्न हुई है। परोक्ष में कोई वस्तु गिर जाने पर केवल उसकी आवाज़ से ही हम पहचान लेते हैं कि क्या गिरा। शीशे के गिलास की आवाज़ कांसे के गिलास से भिन्न होती है। लकड़ी टूटने की आवाज़ मिट्टी का गमला टूटने फूटने ऐसी नहीं होती। तात्पर्य कि प्रत्येक वस्तु की अपनी विशिष्ट ध्वनि होती है जो आघात पड़ने पर सुनाई देती है। इस ध्वनि को रणन कहते हैं। सृष्टि के आरंभ में मानव वाणी विहीन था, किंतु जब वह संसार के विभिन्न वस्तुओं के संपर्क में आया तो तत्त्वत वस्तुओं को उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ा उससे अनायास तत्त्वत वस्तुओं के बोधक शब्द उसके मुंह से निकल पड़े। जैसे विस्तृत जल प्रवाह को देखने पर उसके मुंह से एकाएक नदी शब्द निकल पड़ा। तीव्रगामी पशु विशेष को देखते ही अश्व शब्द उत्पन्न हो गया। इस तरह संसार के समग्र वस्तुओं के लिए शब्द बन गए। भाषा का निर्माण हो जाने के बाद मनुष्य की यह सहज शक्ति समाप्त हो गई। जैसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु की आवाज़ भिन्न होती है वैसे ही एक वस्तु के वाचक शब्द से दूसरे वस्तु का वाचक शब्द भी स्वभावतः भिन्न हो गया। नदी वाचक शब्द पर्वत वाचक शब्द से भिन्न तो अश्ववाचक शब्द गजवाचक शब्द से भिन्न। समीक्षा, यह सिद्धांत शब्द और अर्थ के नैसर्गिक संबंध मानता है तो तर्क संगत से अधिक रहस्यात्मक है। जैसे जादूगर अपनी छड़ी से पलक मारते कुछ का कुछ कर दिखाता है वैसे ही बाह्य वस्तु संपर्क होते मनुष्य भाषा बनाता चला गया और सारे शब्द निष्पन्न हो गए। वैसे उसकी शक्ति भी समाप्त हो गई। कहने की आवश्यकता नहीं कि इसमें वैज्ञानिकता का बिल्कुल अभाव है। बाह्य वस्तु की ऐसी प्रतिक्रिया कभी नहीं होती। वह कल्पना सर्वथा यादृच्छिक है, इसका कोई सुसंगत आधार नहीं है। आगे चलकर यह सिद्धांत स्वयं मैक्स मुलर को इतना सदोष प्रतीत हुआ कि उन्होंने उसे छोड़ दिया। आज इसका उल्लेख केवल इससे किया जाता है कि हम जान सकें कि भाषोत्पत्ति विषय सिद्धांतों की कल्पना के प्रसंग में कैसे कैसे विलक्षण सिद्धांत उपस्थित किए गए थे। अंग्रेजी में डिंग डांग घंटे की ध्वनि को कहते हैं, इसलिए घंटे की ध्वनि के सादृश्य पर मनुष्य के मुख से उच्चरित होने वाली ध्वनियों के लिए यह शब्द का प्रयोग किया गया था। घंटे पर आघात करने के बाद जो ध्वनि होती है उसे रणन कहते हैं, इसलिए इसका यह हिंदी रूपांतरण उचित है। चार, आवेग पुह पुह सिद्धांत। इस सिद्धांत को मनोराग व्यंजक शब्द मूलकतावाद या मनोभावाभिव्यंजकतावाद जैसे लंबे और दुरुच्चार शब्दों से हिंदी के अनेक भाषा विज्ञान की पुस्तकों में प्रस्तुत किया गया है। इसकी तुलना में आवेग सिद्धांत सुखोच्चार तो है ही सार्थकता के दृष्टि से भी अधिक व्यापक है। इस सिद्धांत के अनुसार हर्ष शोक विस्मय क्षोभ क्रोध घृणा आदि मनोभावों की सहज अभिव्यक्ति से जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उन्हीं से भाषा की उत्पत्ति हुई है। संवेदना या भावना की तीव्रता होने पर आप से आप ध्वनि निकल पड़ती है। जैसे हर्ष में वाह वाह, आह सुख या कष्ट में आह ओह हाय विस्म में ए हाय ओहो तिरस्कार में छी दिक दुत आदि। जब भाषा का विकास नहीं हुआ था तो मनुष्य ऐसे ही ध्वनियों से अपने भावों को व्यक्त करता था। क्रमशः उसकी भाषा भाषण शक्ति का विकास हुआ और बाद में भाषा निर्मित हुई। समीक्षा। इस सिद्धांत के अनेक दोष हैं। पहला, सबसे पहली बात तो यह है कि ये शब्द आवेगात्मक तीव्रता के ही बोधक हैं। इनका संबंध स्वाभाविक अभिव्यंजन से नहीं है, अतः ये संप्रेषण प्रधान भाषा के सहज अंग नहीं कहला सकते। दूसरा, इन शब्दों का मानसिक से अधिक शारीरिक क्रियाओं से साहचर्य है। ये शब्द सोच विचार कर नहीं बोले जाते, आवेग के व्यतिरोक की स्थिति में आप से आप मुंह निकल पड़ते हैं। तीसरा, कभी कभी आवेगों की अभिव्यक्ति केवल उच्छ्वास या हुंकार द्वारा ही हो जाती है। आवेग की तीव्रता के समय मुख विवर खुला होने से यूं भी आ ओ ए आदि ध्वनियां निकल पड़ती हैं। भाषा का चिंतन से घनिष्ठ संबंध है और इन आवेग व्यंजक शब्दों से चिंतन का सर्वथा अभाव पाया जाता है। चौथा, आवेग बोधक शब्दों की संख्या किसी भी भाषा में अत्यल्प है, साथ ही वे भाषा के अनिवार्य अंग भी नहीं है, उनका वाक्य में प्रयोग शायद ही होता हो। पांचवा, विभिन्न भाषाओं में इस वर्ग के शब्दों की एक रूपता भी नहीं है। उदाहरणार्थ, हर्ष के लिए अंग्रेजी में हुर्रह, शोक के लिए रॉस, तिरस्कार के लिए फाई, अनुमोदन के लिए ब्रेवो आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। पीड़ा के अभिव्यक्ति के लिए जर्मन में आउ, फ्रांसीसी में आहे, अंग्रेजी में ओफ आदि शब्द चलते हैं। इससे स्पष्ट है कि आवेगात्मक स्थितियों में भी विभिन्न भाषा भाषियों की शाब्दिक प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं होती। छठा, इन शब्दों का प्रयोग प्रायः वही होता है जहाँ भाव आवेग के कारण भाषा मुख हो जाती है, अर्थात मनुष्य बोलना चाहते हुए भी नहीं बोल पाता, तब किसी प्रकार अपने मन का भाव व्यक्त कर मन हल्का कर लेना चाहता है। इस दृष्टि से भी इन्हें सामान्य स्वाभाविक भाषा का अंग मानना कठिन है। सातवां, प्रत्येक भाषा को देखा जा सकता है कि एक मूल शब्द से अनेक शब्द निष्पन्न हो जाते हैं। आवेग बोधक शब्द इस दृष्टि से ही अनुपयोगी हैं, किसी आवेग को व्यक्त करके भूल ही कर दें दूसरे शब्दों को निष्पन्न नहीं कर सकते। दूसरी बात यह कि आवेगों की भी उनसे पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती। आह या ओह करने से केवल इतना ही पता चलता है कि वक्ता को कोई कष्ट या शोक है, पर वह कब से है, किस कारण से है, कितना तीव्र है आदि का पता नहीं चलता। आठवां, इन ध्वनियों को यथावत लिपिबद्ध करना भी संभव नहीं है। जैसे किसी पर तरस खाते समय या खेद व्यक्त करते समय जो ध्वनि निकलती है उसे चच च च लिख कर व्यक्त करने के लिए क्रमशः न वह न तो चच च च है न त त त, इसको लिपिबद्ध करने का कोई संकेत है ही नहीं। यही स्थिति अनेक अन्य आवेग बोधक ध्वनियों में भी होती है। सारांश यह कि आवेग सिद्धांत की भाषोत्पत्ति विषयक उलझन को सुलझाने में असमर्थ है। ऊपर के विवेचन से इसका खोखलापन स्पष्ट है। पांचवा, श्रम धने यो हे हो सिद्धांत। शारीरिक श्रम करते समय स्वभावतः श्वास प्रक्रिया श्वसन प्रश्वसन की गति तीव्र हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पेशियों का ही नहीं स्वर तंत्रियों का भी आकुंचन प्रसारण यानी सिकुड़ा फैलाव होने लगता है और उनका कंपन बढ़ जाता है। अतः कुछ ध्वनियां अनायास निकलने लगती है। उदाहरणार्थ, कपड़ा धोते समय धोती हिंचो हिंचो या छियों छियों बोलता रहता है। इसी तरह पालकी ढोते समय कहार, नाव खेते समय मल्ला, रोलर खींचते या छप्पर उठाते समय मजदूर किसी न किसी प्रकार की ध्वनि के साथ अपना काम करते हैं। आरंभ में मनुष्य सामूहिक रूप से काम किया करता था। बोलिनोवस्की जैसे मानव विज्ञानी ने कुछ वन्य प्रजातियों के आचार व्यवहार का अध्ययन करने के बाद यह प्रमाणित किया कि अकेले काम करने की अपेक्षा समूह में काम करना मनुष्य की सहज प्रवृत्ति रही है। सभ्यता के विकास के साथ यह प्रवृत्ति क्षीण होती गई और मनुष्य आत्मकेंद्रित होता गया। एक प्रकार से बौद्धिक कार्य के विकास का यह अनिवार्य परिणाम था। शारीरिक कार्य समूह में किया जा सकता है किंतु बौद्धिक नहीं। इसलिए आज भी शिक्षित जनों के बीच अकेले काम करने की अपेक्षा समूह में काम करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। रेल के डिब्बे में चढ़ते समय भी यह प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। पढ़ा लिखा व्यक्ति प्राय एकांत स्थान ढूंढता है किंतु देहात के रहने वाले एक ही डिब्बे में घुसने का प्रयास करते हैं। किसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हुए सारा काम करने से अधिक शक्ति का बोध होता है। रोलर खींचने या छप्पर उठाते समय एक साथ हो कहकर बोझ खींचने और उठाने में जितनी आसानी मालूम होती है, इसीलिए इसे श्रम ध्वनि, श्रम के साथ उत्पन्न होने वाली ध्वनि कहना सर्वथा उपयुक्त है। इसको श्रम परिहरण मूलकतावाद जैसे अनावश्यक लंबे शब्द से व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः उस ध्वनि के द्वारा श्रम का परिहार नहीं होता, वह तो किसी शारीरिक क्रिया के साथ अनायास उत्पन्न होती है जो श्रम या कार्य में सहायक है। नुआरे जैसे भाषा वैज्ञानिक श्रम ध्वनि से ही भाषा की उत्पत्ति मानने के आग्रही हैं। समीक्षा, आवेग बोधक ध्वनियों के समान ही इन ध्वनियों से भी सार्थकता का अभाव स्पष्ट है। हिंछो इंछो, छियो छियो, हो हो या हो हो, कोई अर्थ नहीं निकलता। आवेग बोधक ध्वनियों का संबंध भाव की तीव्रता से है और श्रम ध्वनि का शारीरिक क्रिया से, अन्यथा तात्विक दृष्टि से दोनों एक हैं। दोनों का अर्थ पक्ष शून्य है। निरर्थक ध्वनियों से सार्थक भाषा की उत्पत्ति की कल्पना अयुक्तिसंगत है। छठा, अनुकरण बोवोव सिद्धांत। बोवोव भोवो का अंग्रेजी रूपांतर है। इस सिद्धांत का नाम मैक्स मूलर ने विनोद में रख दिया। इस सिद्धांत का वास्तविक नाम ओनोमेटोपिक थियरी है। ये कुछ लोग इसको एकोइक थियरी भी कहते हैं। हिंदी में इसके लिए शब्दानुकरण मूलकतावाद चलता है जो अनावश्यक रूप से बड़ा है। इस सिद्धांत के अनुसार वस्तुओं का नामकरण उनसे उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक ध्वनियों के आधार पर हुआ है, अर्थात जिस वस्तु में जैसी ध्वनि उत्पन्न हो सुनाई गई उसी प्रकार उसका नाम रख दिया गया। जैसे काका रटने वाले को काक, कुकुर रटने वाले को कोकिल, दर दर ध्वनि करने वाले को दूर दूर, झरझर करने वाले जल प्रवाह को निर्झर या झरना कहा जाने लगा। उसी तरह मरमर, गर्जन, झनझन, कलकल, चटपट, झमाझम, गड़गड़ाहट, घबराहट, सनसनाहट, गिगियाना, मिमियाना, किकियाना, तड़तड़ाना, फड़फड़ाना, कड़कड़ाना, बड़बड़ाना, खटखटाना, हिनहिनाना जैसे शब्द ध्वनि साम्य के आधार पर प्रयोग में आए। ध्वनि के समान चक्षुष प्रभाव के आधार पर अनेक शब्द बने, जैसे चकचक, चकमक, जगमग, झकझक आदि। सुमित्रानंदन पंत की कविता का निम्नलिखित अंश ऐसे शब्दों से भरा है। जीवन का उल्लास या सिहर सिहर, या लहर लहर, या फूल करता विलास, रे फैल फैल फेनिल हिलोल, उठती हिलोल पर लोल लोल, शतयुग के शतबुद्ध विलीन, बनते पल दल रुद्र नवीन, जीवन का जल्दी डोल डोल, कल कल छल छल करता किलोल। समीक्षा, पाला, यह सिद्धांत मनुष्य को वाणविहीन मान लेता है और उनकी भाषा का आरंभ पशु पक्षियों या प्राकृतिक वस्तुओं की ध्वनियों के अनुकरण पर सिद्ध करता है। परिणाम तो भाषा की दृष्टि से मनुष्य पशु पक्षियों से विहीन कोटि का जीव सिद्ध होता है। यह कल्पना दो दृष्टियों से आग्रह है। एक तो यह कि मनुष्य से पहले पशु पक्षियों को भाषा मिली और उसने उनके अनुकरण से भाषा सीखी। दूसरी यह कि जब मनुष्य को बोलने की शक्ति भी नहीं थी तो उसे ध्वनियात्मक अनुकरण करना कैसे आया। इसमें ध्वनि उत्पन्न करने की दो संभावना नहीं होगी, वह ध्वनियात्मक अनुकरण करने में समर्थ कैसे हो सकता है। दूसरा, इस सिद्धांत को स्वीकार कर लेने पर भी मनुष्य की उत्पत्ति का प्रश्न हल नहीं होता, क्योंकि अनुकरणात्मक शब्दों की संख्या भी किसी भाषा में अत्यल्प है। अर्थवस्की अमेरिका की एक भाषा जैसी भाषा में तो अनुकरणात्मक शब्द हैं ही नहीं, फिर उसकी उत्पत्ति की समस्या का समाधान क्या होगा। तीसरा, आवेग बोधक शब्दों के समान अनुकरणात्मक शब्दों के भी रूप विभिन्न भाषाओं में विभिन्न हैं। इसे स्पष्ट है कि अनुकरण की एक रूपता भी सभी भाषाओं में नहीं रही। संस्कृत में निर्झर, हिंदी में झरना, अंग्रेजी में स्ट्रीम, जर्मन में स्ट्रोम, रूसी में रुईचेई, फ्रांसीसी में रिवसो, संस्कृत में दुरदुर, हिंदी में मेढक, अंग्रेजी में फ्रॉक, जर्मन में फ्रॉश, रूसी में ल्यागुश्का, फ्रांसीसी में गेनिश। चौथा, अनुकरण मूलक या ध्वन्यार्थ व्यंजक शब्द मुख्यतः भाषा के अलंकरण पक्ष में आते हैं। वे भाषा का आधार प्रस्तुत नहीं करते, जैसा पंत के ऊपरी उद्धत उदाहरण से स्पष्ट है। यह पांचवा, यह सिद्धांत किसी भी भाषा के शब्दावली के सीमित अंश के विकास की व्याख्या करता है, संपूर्ण भाषा की उत्पत्ति की नहीं। इस सिद्धांत का सार इतना है कि अन्य प्राणियों की जो ध्वनि अर्थहीन किंतु उनके वैशिष्ट किसी वैशिष्ट से संबद्ध थी, वह मनुष्य के द्वारा सार्थक बना दी गई। दूसरों की निरर्थक ध्वनि को सार्थक शब्द में परिणित कर देने की क्षमता वाले बौद्धिक प्राणी को मनुष्य या सचेतन अचेतन पदार्थों की अर्थहीन ध्वनियों का ऋणी मानने की कल्पना के निस्सार है, यह कहने की आवश्यकता नहीं। सातवां, इंगित सिद्धांत यानी जेस्चर। इस सिद्धांत का संकेत डॉक्टर राय ने किया था, किंतु इसे पल्लवित किया अलेक्जेंडर जोहानसन ने। उनका विवेचन भारत यूरोपीय भाषाओं के अतिरिक्त प्राचीन चीनी, हिब्रू, तुर्की तथा कतिपय अन्य भाषाओं पर आधारित था। उनके अनुसार भाषा का विकास चार चरणों में हुआ। प्रथम चरण में भाव व्यंजक शब्द हैं जो आनंद, क्रोध, भूख, प्यास जैसे मूल भावों को अभिव्यक्त करते हैं। ये शब्द मनुष्य द्वारा तत्त्वत स्थितियों में उत्पन्न की गई ध्वनियों से बने होंगे। जिस प्रकार बंदर उपर्युक्त स्थितियों में नाना प्रकार की ध्वनियाँ करता है, उसी प्रकार मनुष्य के भी करता रहा होगा और बाद में उन्हीं ध्वनियों के अनुकरण से इन भावों के व्यंजक शब्दों का विकास हुआ होगा। दूसरे चरणों में विभिन्न जीव जंतुओं तथा निर्जीव व पदार्थों के ध्वनियों के अनुकरण पर शब्द बने होंगे। तीसरे चरण में मनुष्य ने स्वयं अपने आंगिक संकेतों के अनुकरण पर शब्द निर्माण किया होगा। चौथे चरण में मानव के मानसिक विकास के साथ सूक्ष्म भावों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों की उत्पत्ति हुई होगी। इस चरण में किस प्रकार के इंगितों का अनुकरण किया गया होगा, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। समीक्षा। यह सिद्धांत भी अन्य सिद्धांतों से किसी कार्य में श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि अनेक की तुलना में सारहीन ही है। दूसरों के अनुकरण की बात तो कुछ जस्ती भी है, पर अपना अनुकरण कौन करता है, भले ही वह आवेगात्मक ध्वनियों का हो या फिर आंगिक चेष्टाओं का। वस्तुतः अनुकरण शब्द ही अन्य सापेक्ष है। अपने हाथ के अनुकरण, अपने पैर के अनुकरण का क्या अर्थ होगा? पशु पक्षी भी ऐसा नहीं करते, फिर मनुष्य जैसा बौद्धिक प्राणी ऐसा क्यों करेगा? इस सिद्धांत में एक दोष और भी है। यदि भाषा कोई उत्पत्ति को उतना ही यांत्रिक माना जाए जितना जोहानसन ने प्रतिपादित किया है, तो संसार की सभी प्राचीन भाषाओं में प्रारंभिक भाव के अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के में काफ़ी समानता होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। आठवां, टाटा सिद्धांत। यह सिद्धांत भी बहुत कुछ इंगित सिद्धांत जैसा ही है। इसके आरंभ में मनुष्य जिस काम को करते समय अपने अंगों की गति का अनुकरण उच्चारण अवयवों से करता था, इस क्रम में कुछ ध्वनियों या ध्वनि संयोगों का उच्चारण अनजाने में ही हो जाता था। इन ध्वनियों या ध्वनि संयोगों के बाद में भाषा का विकास हुआ होगा, ऐसा इस सिद्धांत के समर्थक मानते हैं। समीक्षा। जिन कारणों से इंगित सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया, वही कारण टाटा सिद्धांत की अस्वीकार्यता पर भी लागू होते हैं। अंगों की गति का अनुकरण करते हुए ध्वनियों या शब्दों की उत्पत्ति और फिर से भाषा का विकास कल्पना के विलास के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इस प्रकार के अनुकरण की प्रवृत्ति तो बंदरों में भी दिखाई नहीं पड़ती, फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। नवा, संगीत सिंग सॉन्ग सिद्धांत। आदिम मानव भावुकता के क्षणों में संगीतात्मक ध्वनियां उत्पन्न करता रहा होगा। बाद में इन्हीं संगीतात्मक ध्वनियों से अर्थ का योग हुआ होगा और उससे भाषा का विकास। इस पर्सन ने गाने के खेल यानी सिंगिंग स्पोर्ट से उच्चारण के अवयवों के द्वारा उच्चारण के अभ्यास की बात कहकर इसका समर्थन किया है। समीक्षा। भावुक क्षणों में मनुष्य के संगीतात्मक प्रवृत्ति का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता, और फिर गुनगुनाने से अक्षर और शब्द तथा बाद में भाषा कैसे विकसित हुई, इस संबंध में यह सिद्धांत मौन है। कहना नहीं होगा कि संगीत सिद्धांत भी भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न पर की गई अन्य कल्पनाओं के समान एक और कल्पना है, इसमें वैज्ञानिकता या तर्कपूर्ण विवेचन का सर्वथा अभाव है। दसवां, प्रकृति या नेचर सिद्धांत। प्रकृति ने जिस प्रकार मनुष्य को उत्पन्न किया, उसी प्रकार उसकी भाषा के भी वह मान्यता जर्मन विद्वान हर्डर की थी, इसीलिए इस सिद्धांत का नाम प्रकृति सिद्धांत रखा गया। मनुष्य ने जब दो पैरों से चलना सीखा तो उसके हाथ अन्य कार्यों के लिए मुक्त हो गए। जब हाथ भी नाना प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहने लगे तो भावाभिव्यक्ति के लिए विगंगों से काम लिया जाने लगा। भोजन करने का तरीका मुंह को और कोई काम न था। ऐसी स्थिति में संकेत के बोझ से हाथों को मुक्त करने के लिए विगंगों ने संकेत का भार संभाल लिया। इस प्रकार मनुष्य के विकास के साथ स्वाभाविक रूप से भाषा का भी विकास हुआ। समीक्षा। इस सिद्धांत के द्वारा यह स्थापित करने का प्रयास किया गया है कि भाषा की उत्पत्ति सचेष्ट प्रयत्न का परिणाम है, यह मनुष्य के विकास क्रम का अंग है, किंतु इससे यह स्पष्ट नहीं है कि इस विकास का स्वरूप क्या था, अर्थात आद्य शब्द कौन से थे, उन शब्दों द्वारा अर्थ का संप्रेषण किस प्रकार होता था। अतः प्रकृति सिद्धांत की भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न का समाधान करने में असफल है। ग्यारहवां, समन्वय सिद्धांत। कुछ भाषा वैज्ञानियों ने इन सिद्धांतों की अव्याप्ति और परिसीमा देखकर सबके समन्वय को भाषा की उत्पत्ति का आधार माना है। तात्पर्य यह है कि किसी एक सिद्धांत को भाषा का आरंभ मानने के बदले सारे सिद्धांतों को मानना अधिक उचित है। जैसा हमने देखा, कुछ शब्द अनुकरण से उत्पन्न हुए तो कुछ आवेग की तीव्रता से और कुछ श्रम के साहचर्य से। इस तरह एक एक सिद्धांत को अलग अलग मानने की अपेक्षा उनके समन्वय की भाषा की उत्पत्ति के कारण मानना निश्चित ही अधिक व्यापक है। समीक्षा। पहला, सभी सिद्धांतों को समेकित कर देने पर भी भाषा के अत्यंत साधारण अंश की उत्पत्ति का ही समाधान हो पाता है। उदाहरणार्थ निम्नलिखित वाक्य लीजिए। सिंगल इन्वर्टेड कामा, भाषा और विचार की उत्पत्ति का प्रश्न मानव समाज के विकास के प्रश्न के साथ अनिवार्य रूप से संयुक्त है। कामाबंद। इन छोटे वाक्यों में भी एक शब्द भी ऐसा नहीं है जो उपर्युक्त सिद्धांतों के समन्वित रूप से भी निष्पन्न किया जा सके। भाषा के असीम व्यापकता और गंभीरता को देखते हुए ये सभी सिद्धांत केवल कल्पना विलास प्रतीत होते हैं। दूसरा, ये सभी सिद्धांत यह मानकर चलते हैं कि आरंभ में मानव मुक्त था, पर यह शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से अस्वीकार है। जो प्राणी वाणी संपन्न है थे, वे तो जहाँ के तहाँ रह गए और मुख मानव जैसे समृद्ध असमर्थ अभिव्यंजना माध्यम का अधिकारी बन गया। तीसरा, सूक्ष्म अमूर्त भावों के व्यंजक शब्दों की उत्पत्ति की व्याख्या इनमें किसी सिद्धांत में नहीं होती। केवल स्थूल अर्थों के बोधक शब्दों को लेकर न तो किसी भाषा का आरंभ हो सकता है और न भाषा की असीम शक्ति और व्यापकता की व्याख्या। इस सिद्धांतों को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि इनके उपासकों ने तथ्यान्वेषण से अधिक कल्पना से काम लिया। यह संबंध समस्या कब सुलझेगी और कभी सुलझेगी भी यह संदिग्ध है। इसलिए आधुनिक भाषा विज्ञान से विचार विमर्श करना ही समय का अपव्यय मानता है।